ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्र जातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हर। जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी इस श्रृंखला में पिछले कुछ दिनों से दामोदर अष्टक के श्लोकों पे चर्चा किया जा रहा है, तो आज मुझे आज्ञा दी गई है कि मैं जो चौथा श्लोक है उस पे चर्चा करूं। ये दामोदर अष्टक प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम कार्तिक के महीने में रोज भगवान के सामने जब हम दीप दान करते हैं तो उसके साथ साथ ये दामोदर अष्टक प्रेयर अर्पण किए जाते हैं। जैसे कार्तिक के महीने में भगवान की ये सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। बताया गया जो भी व्यक्ति ये रेगुलरली दीप दान करता है उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो ये जो सत्यव्रत मुनि जो प्रार्थना लिखी है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकु, ये प्रार्थनाओं के द्वारा हम सीखते हैं कि हमें भगवान के तत्व के बारे में समझते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में, और क्या हमारी मनोभावना होनी चाहिए जब हम भगवान को कोई चीज़ अर्पण करते हैं, जब हम भगवान को कोई दिया दिखाते हैं या भगवान को भोग लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को उसकी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि भगवान के शरीर में अंधकार है इसलिए हम दिए से भगवान को प्रकाशित कर रहे हैं। भगवान तो दिव्य हैं, उनके शरीर से जब ब्रह्म ज्योति प्रकाश आता है वो पूरे जगत को प्रकाश देने वाला है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश शेष वसुधाधि विभूति भिन्नम। तो जो सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, वो सब भगवान के ब्रह्म ज्योति से आ रहा है। अब ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है, नेचुरल स्वाभाविक। तो जो व्यक्ति पूरे ब्रह्म ज्योति सूर्य और चंद्रमा को प्रकाश देने वाले हैं उनको एक दिए की क्या जरूरत है? कोई अगर कोई व्यक्ति करोड़पति मिलता है आपको, मान लो टाटा बिरला या मुकेश अंबानी जी, और आप उसको बोलते हैं मैं बहुत खुश हो गया हूँ आपके वो 10 रुपये दान दे रहा हूँ, तो हरे कृष्ण, तो कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। ऐसे ही जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान वो चीज़ को नहीं देखते, वो देखने किस भावना से अर्पण किया जाता है। जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ते अप्रयच्छति तदहम भक्ति परितम अश्नामि प्रयतात्मना, कि जो कोई प्रेम से पत्ता फल या जल जो भी अर्पण करता है मैं उसको स्वीकार करता हूँ अगर वो भक्ति के द्वारा अर्पण है। भक्ति एसेंशियल चीज़ है, भक्ति के भक्त्या मम अभिजानाति। नहीं तो महाभारत में देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में गए तो दुर्योधन ने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया और उनके लिए बहुत सारे 56 भोग बनाए, बहुत सारे आइटम्स, लेकिन भगवान ने उसको ठुकरा दिया। भगवान दुर्योधन को बताते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ पर कौन भोजन करता है, या तो कोई घनिष्ठ मित्रता हो, प्रेम हो, या फिर कोई बहुत ही आकस्मिक आवश्यकता हो। भगवान से बताते हैं कि क्योंकि तुम मेरे भक्तों के द्रोही हो इसलिए तुम मेरे द्रोही हो। अगर हमें भगवान की कृपा को प्राप्त करना है तो बहुत सारी तरीके हैं उनके भक्तों की सेवा करना। अगर हम भगवान के रोष को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के गुस्से को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भक्तों का अपराध करें, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान के प्राण हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भजन में कहते हैं, तोमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद को हे न मोर वैष्णव पराण। भगवान गोविंद बोलने के वैष्णवी मेरे प्राण हैं। तो जब हम भगवान के भक्तों का अपराध कर रहे हैं तो भगवान बहुत दुखी होते हैं, भगवान नाराज होते हैं। जब हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए सबसे ऊंचा धर्म है भक्तों की सेवा करना। मत भक्ता पूजा धीबी का माम, भगवान कहते हैं कि मेरी सेवा से भी बढ़कर है मेरे भक्तों की सेवा करना। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में एक स्थान है कांचीपुरम, जहाँ पर महान संत श्रीपाद रामानुजाचार्य निवास करते थे। और रामानुजाचार्य एक बार उनके शिक्षा गुरु थे कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण भगवान के पुजारी थे, भगवान के सेवक थे। वहाँ पर कांचीपुरम में जो विग्रह है वरदराज स्वामी, जैसे आपने सुना होगा आज से 2-3 महीने पहले वो 40 दिन का दर्शन था, 48 दिन का, आप में से किसी ने किया था दर्शन अति वरदराज स्वामी की तमिलनाडु में, चेन्नई में बहुत बहुत भीड़ थी। तो वही भगवान वरदराज स्वामी से रामानुजाचार्य के शिक्षा गुरु कांचीपूर्ण रोज उनको पंखा करते थे, चंवर, जैसे हम मंदिर में पुजारी भगवान को चंवर डुलाते हैं ऐसे। तो चंवर डुलाते हुए भगवान की सेवा करते, भगवान से बातचीत भी करते, भगवान के साथ उनका गहरा संबंध था, ये बहुत पावरफुल है, व्हाट्सएप से भी ज़्यादा अच्छा संबंध था, पी ऐप परमात्मा ऐप। तो भगवान से प्रश्न पूछते थे, भगवान तुरंत जवाब देते थे। तो रामानुजाचार्य ने, रामानुजाचार्य भगवान की सेवा नहीं कर रहे थे लेकिन भक्तों की सेवा कर रहे थे। और उन्होंने कांचीपूर्ण से पूछा कि आप तो भगवान के बहुत करीब हो, आप भगवान से प्रार्थना करो और उनसे पूछो कि रामानुजाचार्य वो आपके भक्तों की सेवा कर रहे हैं, वो आपकी सेवा नहीं कर पा रहे, तो क्या उनको आपकी प्राप्ति होगी, क्या उनको आपकी कृपा मिलेगी। तो कांचीपूर्ण ने प्रश्न भगवान के सामने पेश किया कि हे स्वामी वरदराज, वरदराज मतलब वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ, रामानुजाचार्य मेरे पीछे खड़े वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या उनको आपकी प्राप्ति होगी। तो भगवान ने जवाब दिया कि रामानुजाचार्य मेरे भक्तों की सेवा कर रहे हैं, जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वो मुझे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए निश्चित इसी जन्म में उनको मेरी प्राप्ति होगी। तो रामानुजाचार्य पीछे सुने बहुत प्रसन्न थे, लेकिन कांचीपूर्ण जो भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहे थे वो मन ही मन सोचने लगे मेरा क्या होगा, वॉट अबाउट मी, मैं तो आपकी सेवा नहीं कर रहा, आपके भक्तों की मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, भक्तों की नहीं कर रहा। तो उन्होंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, रामानुचार्य का तो टिकट कन्फर्म हो गया, मेरा क्या है, क्या वो भी कन्फर्म होगा या वेटिंग लिस्ट रहेगा? तो भगवान ने जवाब दिया कि जो मेरे भक्तों की सेवा कर रहा है उसको मेरी प्राप्ति निश्चित है, वो कन्फर्म्ड है, लेकिन जो मेरी सेवा कर रहा है उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, वो अभी आरएसी है, कन्फर्म नहीं है। तो कांची पूर्ण ने सब तुरंत भगवान की सेवा छोड़ के दौड़े कृष्णा हॉल में, प्रसाद में, खाने के लिए नहीं, सर्विंग के लिए। वो छिप छिप कर अपना वेश बदल के सब भक्तों को प्रसाद परोसने लगे। 3 महीने तक वो सेवा कर रहे थे इस तरह से। हालांकि वो इतने वरिष्ठ थे, अगर वो अपने असली वेश में जाते तो कोई उनको सेवा करने नहीं देता। मान लो कोई बहुत सीनियर सन्यासी हैं, अगर वो आके प्रसाद परोसने लगे तो सबको बहुत लज्जा महसूस होगी, महाराज जी आप तो बैठिए, आप प्रसाद ग्रहण करिए। तो 3 महीने तक वो रोज ये सेवा कर रहे थे, भगवान की सेवा को भी छोड़कर। और फिर वो फिर से भगवान, एक दिन क्या हुआ, बहुत बरसात हो रही थी और एकदम तूफान था, इतनी बरसात कि उनके सारे कपड़े भीग गए। और फिर ये जो कपड़े जो पहने थे, वो तो वेश बदले हुए थे, तो एक दिन उनके कपड़े सब भीगे थे, उन्होंने वही पुराने वस्त्र जो उनका असली वेश तो धारण किया। तो किसी ने देख लिया, बोले अरे आप तो इतने बड़े संत हो, आप तो भगवान वरदराज की सेवा करने वाले, आपके लिए ये ठीक नहीं है। तो फिर से वो भगवान की सेवा करने गए। अरे भगवान से पूछा, मेरा क्या होगा अभी? भगवान बोले, आपने मेरे भक्तों को प्रसन्न किया है, जरूर आपको मेरी कृपा मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान की सेवा से भी ज्यादा ऊंचा है भक्तों की सेवा करना। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। ये शुद्ध भक्तों की सेवा करना, ये प्रेम लतिका का मूल है। महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है पंढरपुर, आप में से कोई गए हैं पंढरपुर? तो पंढरपुर में हम देखते हैं कि भगवान विट्ठल खड़े हुए हैं। वो किस लिए खड़े हुए हैं? वो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के लिए नहीं खड़े हैं, वो बस के लिए नहीं खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? अपने भक्त पुंडलिक के लिए। पुंडलिक एक महान भक्त हैं जो अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उनके माता पिता शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान आते हैं और पुंडलिक भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं, और भगवान को एक एक ब्रिक, एक ईंट देते, भगवान आप यहाँ खड़े रहो, मैं अभी आता हूँ। भगवान विट्ठल खड़े हो जाते हैं, इतने खुश होते हैं कि देखो मेरे भक्त दूसरे भक्त की सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ा वरदान यही है कि भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा सुनना और उत्साह में कीर्तन करना। हरे कृष्णम कृष्णा कृष्णम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जो श्लोक जिसमें मैं चर्चा करना है आप सब जानते हैं, हम सब साथ में गाएंगे। वरम देव मोक्षम न मोक्ष वदिम वा न चान्य वृणेहम वरिषदपिह, इदं ते वपुर्णात गोपाल बालम सदा मे मन वीरष्टम किमन्यै। एक बार, वरम देवं मोक्षम न मोक्षवदिं वा न चान्य वृणेहम वरिषदपिह, इदं ते वपुर्णात गोपाल बालम सदा मे मनस्याविरष्टं किमन्यै। वरं देवं मोक्षं न मोक्षवदिं वा न चान्य वृणेहं वरिषदपिह, इदं ते वपुर्णात गोपाल बालम सदा मे मनस्याविरष्टं किमन्यै। इसका अनुवाद है, इंग्लिश में पहले पढ़ रहा हूँ फिर हिंदी में। ओ लॉर्ड, although you are able to give all kind of benediction, I do not pray for the boon of impersonal liberation, nor the highest liberation of eternal life in Vaikuntha, nor any other boon. I simply wish that this form of yours as Bal Gopal in Vrindavan may ever be manifest in my heart. For what is the use to me of any other boon? इसका हिंदी में अनुवाद है, हे प्रभु, मैं आप तो वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सब वरदान दे सकते हैं। मैं आपसे मुक्ति नहीं चाहता, निर्विशेष मुक्ति। मैं वैकुंठ में भी नहीं चाहता। वरम देव मोक्षम न मोक्ष वदिम्बा न चाने हम ऋणे हम वरेषाद अपीह। और भी कोई आशीर्वाद नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ? इदम ते वपूर्णाथ गोपाल बालम, आपका ये जो रूप है बाल गोपाल, वो हमेशा मेरे हृदय में प्रकट रहे। अर्थात भक्त क्या चाहते हैं? कि भगवान की स्मृति बने रहे, मैं भगवान आपके बाल गोपाल रूप को हमेशा याद करूं और कभी भूलूं नहीं। सबसे बड़ा बेनेडिक्शन, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, हमेशा भगवान कृष्णा या विष्णु को याद करना और उनको कभी भी नहीं भूलना। तो यहाँ पर विशेष करके बोल रहे हैं, मुझे निर्विशेष मुक्ति नहीं चाहिए। अभी मायावादी निर्विशेषवादी मुक्ति चाहते हैं, हमेशा ब्रह्म 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 करते रहते हैं। ये उनका भ्रम है कि ब्रह्म से सुख मिलेगा। ब्रह्म साक्षात्कार, भगवान में लीन होना, ये भक्त कभी नहीं चाहते। हमारी परंपरा में महान भक्त हैं श्रील प्रबोधानंद सरस्वती, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा लगते हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं, कैवल्य नरकायेत, कैवल्य, कैवल्य मतलब भगवान में लीन होना, ये भक्त क्या मानते हैं? इसको नरक के समान मानते हैं। भैया बोलोगे कैवल्य तो अच्छी चीज है, मुक्ति मतलब कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर साहब क्या करेंगे, कोई बीमारी नहीं, वो भी जप कर सकते हैं। कोई मुक्ति मतलब कोई बुढ़ापा नहीं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कोई टेररिस्ट का डर नहीं, बस निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना, ये मुक्ति। दिखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन तो ये दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि भगवान में एकदम ब्रह्मज्योति में स्थित होना, लेकिन प्रबोधानंद सरस्वती क्या बोलते हैं? कैवल्य नरकायेत, नरक के समान है। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान में लीन होना उसको नरक मान रहे हैं? भगवान तो ज्योतिर्मय है और उनकी ज्योति में प्रवेश करना ये नरक के समान है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? यस, हाँ, क्या है? माता जी ने बताया, भगवान की सेवा का अवसर नहीं मिल रहा। अगर एक भक्त को नरक में सेवा मिल रही है तो नरक भी जाने को तैयार है। अगर नरक में कीर्तन हो रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो नरक भी वैकुंठ है, वहां जाना अच्छा है। नरक में कीर्तन हो और कथा हो, भगवान की भागवत हो, तो नरक भी वैकुंठ है। थोड़ा प्रसाद भी होना चाहिए, पता नहीं वहां होता है कि नहीं। वहां पे बस कीर्तन कथा हो तो इस्कॉन सेंटर, इस्कॉन कुंभी पाक, इस्कॉन महारौरव, है ना, जहां पे कीर्तन हो वही वैकुंठ है। इसलिए चैतन्य भागवत में कहा गया है कि मुझे ब्रह्मा जी का भी जन्म नहीं चाहिए अगर भक्तों का संग नहीं मिल रहा। कीट जन्म हो यथा तुवा दास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नहीं को आश। मुझे अगर कीड़े का भी जन्म मिले भक्त के घर में, भक्त के घर में होगा तो महाप्रसाद मिलेगा, भक्तों के घर में होगा तो कोई ना कोई यू नो लेक्चर सुनने को मिलेगा, कोई कीर्तन सुनने को मिलेगा। अगर अभक्त के घर में है, इंद्र का भी शरीर हो, ब्रह्मा जी का भी शरीर हो, भक्तों का संग नहीं है तो नरक के समान। तो सबसे बड़ा वरदान यही है कि भक्तों का संग मिलना, भगवान का नाम कीर्तन सुनने को मिलना, कथा सुनने को। तंदेर चरण से भक्त सनिवास, जन्मे जन्मे होए यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, मेरी क्या इच्छा है? तंदेर चरण से भक्त सनिवास, भक्तों के संग में रहूं और आपकी कथा सुनूं, आपका नाम लूं। तो मोक्ष जो है, अगर भगवान में लीन होना है, वो भक्त नहीं चाहते। प्रोपा उदाहरण देते हैं, मान लो छोटा बच्चा है, बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है, बड़ा होता है अच्छा प्रसाद खाने के बाद 16 साल का, और फिर अगर वो सोचता है कि मैं फिर से माँ के घर में चले जाऊँ, तो क्या वो अच्छा विचार है? तो ऐसे ही भगवान में लीन होने का विचार भक्त बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभी सारूप्य सालोक्य भक्त कभी कभी स्वीकार कर लेते हैं अगर वो भगवान की सेवा के साथ है, लेकिन अगर सेवा नहीं है तो मुक्ति नहीं चाहते। सार्वभौम भट्टाचार्य तो पहले निर्विशेषवाद का फॉलो कर रहे थे, हमेशा मुक्ति 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 बोल रहे थे, लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद जब उनको समझ में आया कि भक्ति सर्वोच्च चीज है, तो मुक्ति से घृणा करने लगे। और एक भागवत का एक श्लोक है, तत्ते अनुकंपा सुसमिक्षमानो भुंजान एवात्मकृतां विपाकम् हरिद्वाग वपुर्भिर् विददान् नमस्ते जीवेति मुक्ति पदे सदाय भाग। ये श्लोक ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति आने वाले सारे कष्टों को तकलीफों को सहन कर रहा है आपकी कृपा के रूप में, जो हाथ जोड़ के भगवान को धन्यवाद दे रहा है कि भगवान जिस भी स्थिति में आपने रखा है वो मेरे लिए अच्छा है, आपकी अहितु की कृपा है, मेरे को तो ज्यादा कष्ट भुगतने थे, आपने मुझे थोड़ा सा ही कष्ट दिया है। जिस व्यक्ति की ये मनोभावना है, जो भगवान को हृदय से धन्यवाद दे रहे हर स्थिति में, से मुक्ति पदे, वो भगवान के धाम जाने के योग्य है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको मुक्ति शब्द से इतनी घृणा होती थी। पहले तो वो मुक्ति मुक्ति करते थे, लेकिन जब वो इस्कॉन जो मतलब चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए, फिर उनका मन बदल गया, बोले मुक्ति आई हेट, मुझे पसंद नहीं है। उन्होंने भागवत का श्लोक मुक्ति को काट दिया और लिखा भक्ति पदे, मुक्ति पदे को बना दिया भक्ति पदे। और अगले दिन चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु ने देखा ये, तो बोले ये क्या किया आपने, ये भागवत का श्लोक कैसे बदल दिया? तो बोले नहीं, मुझे मुक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मुक्ति जो है मैं जीवन भर मुक्ति मुक्ति बोलता रहा, लेकिन आज मुझे मुक्ति शब्द से घृणा हो रही है, क्योंकि इसमें भगवान की सेवा का कोई अवसर ही नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने समझाया कि यहां पर मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है, मुक्ति अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थित, मुक्ति का सही मुक्ति का अर्थ है अपनी स्वरूप स्थिति में लगना, भगवान की सेवा में लगना, यह असली मुक्ति है। इसलिए जो बड़े बड़े निर्शेषवादी होते हैं, आरुह्य कृच्छेन पतन्ति अधः, वो ऊपर ऊपर ब्रह्म ज्योति तक पहुंच भी जाते हैं, पतन्ति अधः, फिर गिर जाते हैं, क्योंकि वहां पर सेवा का अवसर नहीं है। आपको कोई बोले प्रभु जी सच्चिदानंदन भगवान प्रभु आपको एक अच्छा कमरा देंगे, वहां पे एसी लगा होगा और आप आराम से रहिए, खिड़की से 3 बार प्रसाद मिलेगा और बीच में फ्रूट जूस भी मिलेगा, बस आप अंदर ही रहिए बाहर मत आइए, कितने दिन आप रह पाओगे? नहीं, मे बी 1 दिन 2 दिन, फिर आप खिड़की से छलांग लगा के बाहर आ जाओगे, क्योंकि अगर कमरे में बंद हैं, कोई भक्तों का संग नहीं है, तो फिर सुख नहीं है। ये भक्तों के संग में होते, हम सबको संग की जरूरत है, अकेले भक्ति करना हमारे लिए रिकमेंडेड नहीं है कलयुग में, स्पेशली भक्तों के संगति बहुत जरूरत है। व्हाट इज दैट वर्स, भगवान शिव जी क्या बोलते हैं, तराजू में अगर कि मुताशिष, व्हाट इज दैट वर्स, जो एक तरफ तराजू में स्वर्ग और मोक्ष भी रखा जाए और दूसरी तरफ भक्तों का संग रखा जाए, तो भक्तों का संग ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली कार्तिक के महीने में पावन धाम वृंदावन धाम में रहना, भक्तों का संग करना है। बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम शारीरिक रूप से तो वृंदावन में हैं, लेकिन हमारी चेतना कहाँ है। स्पेशली इस महीने में कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। मुझे पता है कई भक्त हैं जो इस महीने में 32 माला कर रहे हैं, कोई 64 कर रहे हैं, इसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम भगवान की कृपा को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकें। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, व्हाट डज इट मीन टू रिमेन इन वृंदावन, वृंदावन में रहने का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं, टू स्टे इन वृंदावन मीन्स टू टेक शेल्टर ऑफ वृंदावनेश्वरी। जो वृंदावनेश्वरी, किसका नाम है वृंदावनेश्वरी? राधे राधे। आपकी आवाज से लगता है 3 दिन से आप उपवास कर रहे हैं। एकादशी तो कल है, पहले से आपका उपवास शुरू हो गया है। राधे 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 राधे। अभी कल राधा कुंड का आविर्भाव दिवस मनाया, हमें कहानी सुनी, आपने सुना है कहानी उसके बारे में, एक कैसे राधा रानी का नाम पुकारते हैं एक तुच्छ जानवर, सुना आप लोगों ने कहानी? एक 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 जैकल लोमड़ी, यस या सियार, सियार बोलते हैं, शी जैकल मतलब मिसिस सियार, सियारनी, जो बहुत परेशान थे। राधा कुंड के पास में एक जगह है जिसका नाम है शिवखोर, तो वहां पर छोटे बच्चे उस जानवर को बहुत परेशान कर, उसको पत्थर मार रहे, उसके पूरे शरीर में लहू लहान हो गया, खून बह रहा है और कहीं जा भी नहीं सकते। और देखते हैं यहाँ एक गड्ढा, देखते हैं एक जमीन के अंदर, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो जमीन के अंदर छिप जाते हैं। और बच्चे बहुत शैतान थे, बच्चों ने उसको चारों ओर से आग लगा दी जिससे वो कहीं जा भी नहीं सकते, और अगर अंदर रहे तो जल के भस्म हो गए और बाहर आए तो पत्थर। तब उसको याद आया राधा कुंड पास में है, श्रीमती राधा रानी का गांव पास में है, राधा रानी बहुत दया करते हैं दीनों पर जो तकलीफ में है उनके, जैसे एक माँ अपने बालक को कभी दुखी नहीं देख सकते। तो उन्होंने आतुरता के साथ, उत्साह के साथ जोर से पुकारा, राधे राधे। अब इतना जोर से बोलो कि राधा कुंड तक आवाज जाइए, राधे राधे। अभी खाली छठी कला तक पहुंची आवाज, थोड़ा जोर से बोलिए राधे राधे। जब राधा रानी ने आवाज को सुना तो तुरंत बोला, ललिता सखी जाओ जाओ, देखो बलराम हॉल में कोई ड्यूटी बुला रहे हैं मुझे। राधा रानी ललिता सखी को भेजा वो सियार को बचाने के लिए। जब सियार, ललिता ने देखा वो बेचारे सियार अंदर जलने वाले, तो तुरंत अग्नि को शांत कर दिया और आसपास के बच्चों को दूर भगा दिया। और बड़े प्रेम से उस तुच्छ, आप जानते हैं सियार लोमड़ी कोई अच्छा जानवर नहीं माना जाता, जानवर में भी कास्ट अगर माना जाए शेर बहुत ऊंचा माना जाता है, किंग या मोर भी सुंदर माना जाता है, लेकिन सियार, कभी सुना है कि आप कितने अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल सियार की तरह, लेकिन ऐसे एकदम तुच्छ, निग्लेक्टेड, नगण्य, इसको किसी कोई ज्यादा कीमत नहीं है, ऐसे जानवर को ललिता सखी अपने श्री हस्त कमलों से लेके राधिका के चरणों में रखते। श्रीमती राधा रानी के चरण स्पर्श से वो एक अपूर्व गोपी बन जाती, सुंदर गोपी। ये कहानी हम सब के लिए भी लागू होती है। हम इस संसार में हैं जो दावानल की तरह सब जगह से आग लग रही है। संसार दावान ललि ढलोकान त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानुवास्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये संसार जो एक अग्नि, धधकती हुई अग्नि है, इसमें हम सब तकलीफ में हैं, कभी आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। इस साल तो महाराष्ट्र में भी और साउथ केरला में कहीं पर इतनी बरसात हुई, इतनी बरसात, मध्य प्रदेश में भी एक डिवोटी बता रहे थे इतनी ज़्यादा बरसात हो गई सारी खेती उजड़ गई, और कहीं पर दिल्ली साइड में बरसात ही बहुत कम हुई। तो ये सब विपत्तियाँ, इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ राधा रानी की कृपा है, उसी से हम इस संसार से बाहर निकल सकते। ये दुनिया में परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती, बस यहाँ से निकलना है बाहर। अगर कोई जेल में कमेटी बनाता है कि जेल रिफॉर्म कमेटी, कि जेल में कैसे कूलर लगाया जाए, जेल में ठंडा पानी व्यवस्था किया जाए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जेल से कैसे बाहर निकलना इम्पोर्टेंट है। नहीं, व्हाट यू प्रीफर, जेल में फर्स्ट फ्लोर पे एसी कमरा है, सेकेंड पे नॉन एसी, व्हाट डू यू प्रीफर? कोई कमरा, तो वी हैव टू गेट आउट। हाउ टू गेट आउट, कैसे बाहर निकले? बस राधा रानी को पुकारना। ये हरे कृष्णा मंत्र का मतलब ये, हरे मतलब राधा रानी। तो ये प्रार्थना के भाव बहुत महत्वपूर्ण है हमारे वृंदावन वास में। रोज अपनी 16 माला के अलावा करीब 5-10 मिनट भगवान के सामने, या इस कॉन्टेम्पल में तो भगवान के सामने खड़े रहने की जगह बहुत धक्के लगते, प्रार्थना करना मुश्किल। आप भगवान के फोटो के सामने जाके, या जब भीड़ नहीं हो दोपहर के समय 4 बजे आके प्रार्थना करें, हे राधा श्याम सुंदर, मैं तो वृंदावन में रह रहा हूँ, वृंदावन में रह रही हूँ, लेकिन मेरी चेतना अभी भी शुद्ध नहीं है, मेरे को बुद्धि दो जिससे मैं सही रूप में ब्रजवास करूँ, मेरे को वो चेतना दो कि कैसे ब्रज की सेवा की जाए, ब्रज में ब्रज को, ब्रज का सुख लेने के लिए नहीं, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, करुणामयी किशोरी श्यामा उनकी कृपा के लिए हम यहाँ पर हैं। यहाँ के रोम रोम में कृपा भरी है, बस हमें मांगना है। तो वरम देव मोक्षम न मोक्ष वदिम वा नचान्य वृणे हम वरेशाद। मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, और क्या चाहिए? इदम ते वपूर्नाथ गोपाल बालम, भगवान का बाल गोपाल रूप मेरे में। बड़े बड़े संत शंकराचार्य, हालांकि शंकराचार्य तो स्वयं निर्विशेषवाद का प्रचार करते हैं, लेकिन वो भी अंत में कृष्ण के ही भक्त हैं, कि भगवान शंकर जी के ही अवतार हैं। जगन्नाथ अष्टकम उन्होंने ही लिखा है, वो भी भगवान के बाल्य स्वरूप पर ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान की सुंदर लीलाएं हैं, ब्रज में हम सुनते हैं कैसे कृष्ण माखन चोरी कर रहे हैं। इन लीलाओं पर ध्यान करना, लीलाओं का बार बार श्रवण करना चाहिए। एक बार तो कृष्ण माखन चोरी कर रहे हैं तो एक गोपी बहुत शिकायत करने आती, अरे मैया ये देखो तुम्हारे लाला ने इतना कष्ट पैदा कर रखा है। क्या हुआ भाई? मेरा गोपाल तो इतना भोला भाला है, वो कहीं जाता नहीं है। नहीं नहीं, वो हमारे घर में आ रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं। यशोदा माता बोले कि मेरा बेटा, हमारे घर में 9 लाख गाय हैं, वो कहीं और क्यों जाएंगे? तो बोलते अगर सही में मेरा बालक कुछ गलती कर रहा है तो आप उसको पकड़ के ले आओ। क्या बोलते हैं उसको? रेड हैंडेड, रंगे हाथ, जो पकड़े गए वो जानते हैं। यस ये प्रभु जी ने माला पहना है इसलिए मैं उनको डांट रहा हूँ। रेड हैंडेड है ना, रंगे हाथ पकड़े। तो गोपी बहुत चतुराई के साथ, एक दिन जब कृष्ण मक्खन चुरा रहे थे, चालाकी की दरवाजे सब बंद कर रखे थे, सिर्फ एक दरवाजा खुला था, कृष्ण अंदर आए और गोपी ने दरवाजा बंद कर दिया, और कृष्ण मक्खन चुराने जा रहे हैं और गोपी ने उसका हाथ पकड़ के उसको लेकर आए और मैया के पास। कृष्ण बोले, गोपी अब मुझे छोड़ दो, इस बार मैं फिर नहीं करूँगा। नहीं नहीं, यशोदा मैया ने बोला पकड़ना है, गोपी मुझे छोड़ दो, फिर नहीं करूँगा। नहीं नहीं नहीं, गोपी मुझे छोड़ दो, नहीं तो ये बहुत महंगा पड़ेगा, ये सौदा बहुत मुश्किल पड़ेगा। और गोपी को क्या पता बाल गोपाल क्या कर सकते हैं, वो तो पूरे दुनिया को बदल सकते हैं। अरे यशोदा, अरे देखो तुम्हारा लाला, यशोदा, यशोदा माता अपने भोजन बना रहे हैं और दरवाजा खोलते, देखो तुम्हारा लाला, तुम बोल रहे थे तो बहुत भोला भाला बालक है, देखो इसने आज हाथ, इसके हाथ में मक्खन लगा हुआ है, ये मक्खन चुराते हुए पकड़ा गया है, रेड हैंडेड, रंगे हाथ। तो जब यशोदा माता ने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि गोपी के हाथ में वो गोपी का ही बेटा है। और यशोदा माता बोली, अरे तेरा बेटा तेरे घर में मक्खन खा रहा है, इसमें चोरी क्या है? कोई बालक अपने घर से मक्खन खा रहा है, चोरी क्या? और अगर चोरी मानते भी हो तो तेरा बेटा चोरी कर रहे हैं, मेरे कान्हा का नाम खराब कर रहे हो। तो गोपी देख रही, ये क्या है, ये कहां से आ गया, मेरा बेटा तो अंदर सो रहा था, यहां कैसे आ गया? यशोदा माता ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर कृष्ण बन गए मोर पंख धारण करके। मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत महंगा पड़ेगा, अब अगली बार अगर फिर से पकड़ा मेरे को तो तेरे पति का रूप धारण कर। तो कृष्ण ऐसे रोज बहुत मजेदार लीला करते। अभी सोचिए, हम सब सुन रहे हैं, हमको इतना आनंद मिल रहा है ना, हमारे में से कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ को नींद आ रही है, फिर भी आनंद मिल रहा है। अगर आप सोचिए अगर वो लीला आपके सामने हो रही होगी तो कैसा आपको आनंद होगा। नहीं, ब्रज में कृष्ण ऐसी लीला कर रहे हैं और वो लीला अभी भी चल रही हैं, प्रकट और अप्रकट। उस समय 5000 साल पहले लीलाएं प्रकट थे, अभी प्रकट नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रही आंखों से, लेकिन लीला हो रही है कि भगवान की लीला दिव्य है। कौन ही लीला को देख सकता है? अभी हम जाते हैं हमको दिखाई नहीं पड़ता, हम वृंदावन में जाते हैं यमुना किनारे, कोई कृष्ण गोपी दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि हमारी आंखें शुद्ध नहीं है। हमें प्रेम का अंजन लगाना है, प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचने, अंजन लगाना है प्रेम का, भक्ति अंजन। अंजन कैसे मिलता है? कथा सुनने से, नाम जप करने से, कॉन्स्टेंटली। इस अभी 10 दिन तो बीत गए, कल एकादशी है, अब 20 दिन और हैं ब्रज धाम के, कार्तिक के, तो आप जहाँ भी रहें ज़्यादा स्मरण करें। एकादशी के दिन तो एक बार प्रभुपाद जी ने पूछा, एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने प्रश्न पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद आपने बताया है एकादशी के दिन 25 माला जप करना है, क्या ये सही है? शुचैन 25 राउंड्स। प्रभुपाद जी बोले, नहीं मैंने ऐसे नहीं बताया। फिर क्या इंस्ट्रक्शन है? प्रभुपाद जी बोले, मैंने बताया है कि एकादशी के दिन जप बंद ही नहीं करना है। और प्रभुपाद जी बोले, कोई बहुत इमरजेंसी सेवा है तो करना चाहिए, बाकी सब सेवा को बाद में कर सकते। इमरजेंसी सेवा जैसे आरती करना भगवान की, उसको तो रुक नहीं सकते, वो तो करना जरूरी है। या कोई घर में कोई माताओं के बच्चे हैं, बच्चों को प्रसाद देना है, हम बच्चे को नहीं बोल सकते आज एकादशी है कल खा लेना, तो ऐसे इमरजेंसी सेवा है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नामस्मरण कर, एब्जॉर्प्शन। जैसे यहाँ पर पास में एक स्थान है इमली तला, आपने देखा है इमली तला? जब चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज यात्रा में आए थे तो कहाँ रहते थे? नहीं, फोगला आश्रम में नहीं रहते थे, कहाँ रहते थे? अक्रूर घाट। अक्रूर घाट देखा है आपने? जो जब ब्रजमंडल यात्रा जाते तो पहले दिन हम लोग अक्रूर घाट जाते हैं, जब हम मथुरा वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं तो रास्ते में पड़ता है अक्रूर घाट। में भगवान कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तो अक्रूर जी को भगवान ने दर्शन दिए थे पानी के अंदर, वो अपने विष्णु स्वरूप में भी, कृष्ण बलराम। अक्रूर घाट में महाप्रभु रहते थे और जप करने के लिए यहाँ आते थे इतनी दूर। क्यों? क्योंकि अक्रूर घाट में रहते थे, सब लोग आकर उनको मिलना चाहते, डिस्टर्ब करते थे, इसलिए महाप्रभु यहाँ आके जप करते सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक, फिर लौटते थे और प्रसाद लेते थे, उसके बाद फिर शाम को प्रचार करते थे। और प्रचार में क्या बोलते थे? ज़्यादा फिलॉसफी नहीं, खाली हरि नाम के बारे में। तो इमली तला ये बहुत अच्छी जगह है जप के लिए, महाप्रभु से जप कर रहे वहाँ पर एब्सॉर्ब्ड। एक बार तो द्वापर युग में कहानी है, जब श्याम सुंदर लीला कर रहे थे वो रासस्थली को छोड़कर चले गए और श्रीमती राधा रानी कृष्ण को ढूंढ रहे हैं और कृष्ण वहाँ पर ध्यान लगा रहे हैं पेड़ के नीचे। राधा रानी के ध्यान करते करते कृष्ण का शरीर सुनहरा हो गया, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। जब राधा रानी वहाँ पर आए तो देखा मेरे प्राणनाथ कृष्ण है, लेकिन ये कैसा रूप? उन्होंने पूछा, कृष्ण से पूछा है क्या? तब श्याम सुंदर ने बताया कि ये कलयुग में मैं इस रूप को धारण करूँगा, मैं आपके स्मरण में, आपके ध्यान में मेरा कलर ऐसा हो गया, तो कलयुग में मैं आपके भाव को, राधा भाव द्युति सुवलित नौमी कृष्ण स्वरूपम, मैं आपके भाव को अंगीकार करके इस रूप में आऊँगा और अब इस प्रेम का आस्वादन करूँगा। जो राधा रानी का प्रेम है कृष्ण के प्रति, उस प्रेम के महिमा को जानने के लिए भगवान गौरंग महाप्रभु के रूप में आया। मैं केवल मैं उस प्रेम का आस्वादन करूंगा, वो प्रेम का मैं वितरण भी करूंगा। तो वहीं पर चैतन्य महाप्रभु भी जप करते थे। एक बार एक राजपूत नदी पार से वहां पे आए, उसका नाम था कृष्णदास, विवाहित था, परिवार को छोड़कर आए, तो बोले, प्रभु मुझे भी एक स्वप्न आया था कि मुझे आपसे मिलना है, मैं नदी के उस पार रहता हूँ लेकिन मैं भी सब कुछ छोड़कर आपके साथ रहना चाहता हूँ। और जितने दिन महाप्रभु वृंदावन में थे वो राजपूत उनके साथ में रहे। महाप्रभु बहुत समय नहीं रुके कि महाप्रभु आए वृंदावन में कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिस इस ईयर जो 12 नवंबर है उस कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा उसी दिन आए, और जनवरी जब कुंभ मेला में स्नान का समय आया उसके पहले निकल गए, मतलब शायद एक या डेढ़ महीने रहे होंगे महाप्रभु और फिर वो वापस चले गए। लेकिन इस महीने में उन्होंने इतनी सारी सुंदर लीलाएं की। महाप्रभु ने जब वृंदावन में एक दिन में लीला की उसका वर्णन हजारों जन्म में भी कोई नहीं कर सकता। अनंत शेष के हजारों फण हैं, वो भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, वो भी अंत नहीं प्राप्त कर सकते। महाप्रभु जब वृंदावन में थे तो सारे पेड़ लताएं झुक के उनका स्वागत करते, उनको शहद, उन जैसे हमको आंखों में आंसू आते हैं, उनके शरीर से शहद बह रहा है भगवान के स्वागत। जो गाय हैं भगवान के दिव्य देह को चाटने लगते हैं, उनको छोड़ते नहीं हैं, और जो ग्वाले उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बछड़े हैं वो भी, और जो हिरण हैं वो भी भगवान के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। एक तोता और मैना भगवान गौर सुंदर की सुंदरता को देखते हैं, वो तोता बोलता है कृष्ण कितने सुंदर हैं, वो गिरिधारी हैं और वो मदन मोहन हैं। और मैना मतलब शी पैरट, तोता फीमेल तोता, वो बोलने लगती है कि कृष्ण तो सुंदर हैं लेकिन वो सबके मन को हरते हैं, लेकिन राधा रानी जो हैं वो मदन मोहन मोहिनी हैं। कृष्ण है राधा, कृष्ण मदन मोहन है और राधा रानी मदन मोहन मोहिनी। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर कालिया घाट के पास आते, जो द्वादश आदित्य टीला है जहाँ पर मदन मोहन के ड्यूटीज हैं, वहां पर कुछ लोग एक अफवाह फैला दी, मैंने कृष्ण को देखा, कल कृष्ण देखा यहाँ पर नदी के में, कृष्ण भगवान कालिया नाग पे डांस कर रहे थे, और सब महाप्रभु को बोल रहे हैं हमने कृष्ण को देखा, हमने कृष्ण को देखा। महाप्रभु बोले ओ अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। महाप्रभु हंस रहे थे, एक्चुअली वो करेक्ट बोल रहे थे कि भगवान को देख रहे थे वो, लेकिन उनको पता नहीं था कहाँ पर। और बार 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 बोलने से कृष्ण को देखा कि महाप्रभु के सेवक बलभद्र भट्टाचार्य जो भगवान के साथ रह रहे हैं वो भी मोहित हो गए, वो भी भ्रम में पड़ गए। कोई एक झूठ को बार बार बोलो तो लोग उसको सत्य मानने लगते हैं। एक व्यक्ति एक गाय बेचने जा रहा था और उसको जो खरीदी करने लोग को मालूम था उनको बहुत सस्ते में चाहिए थी, तो ले जा रहा था, किसी ने बोला अरे ये बकरी बहुत अच्छी लग रही है। अरे बकरी नहीं गाय, गाय की बकरी है, नहीं ये तो बकरी लग रही है। अरे ठीक है ये तो मजाक कर। दूसरा गया, अरे ये बकरी कहाँ से लाए, अरे बकरी नहीं है। तो तीन चार लोगों ने बोला तो उसको लगा ये सही में बकरी है, फिर उसने बेच दिया। तो बार बार सुनने से लोग विमोहित हो जाते। तो बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के सेवक भगवान के पास है, बोले प्रभु मैंने सुना है कि कृष्ण आए हैं वहां डांस कर रहे हैं वहां पर कालिया दह के पास, आप परमिशन दो मैं तुरंत जाऊं लेकर दर्शन करके आ जाऊं। भगवान ने प्रेम से थप्पड़ मारा, मूर्खेर संगेर मूर्ख हिला, मूर्खों के संग से मूर्ख हो। कृष्ण के न दर्शन दिला कलियुगे, भगवान कलियुग में कभी ऐसा दर्शन देते नहीं है कि कालिया नाग पे डांस कर रहे हैं। फिर दो दिन बाद समाचार मिला, एक्चुअली क्या था, एक फिशरमैन था, एक नाविक, और वो एक नाविक जब मछली पकड़ने जा रहा था, और जो उसकी नौका थी वो दिखने में कालिया नाग के समान थी, और उसके पास एक लैंटर्न था, तो लग रहा था ये कालिया के ज्वेल्स हैं, सबको लग रहा था कि ये वास्तव में कृष्ण है, लेकिन वो कृष्ण नहीं थे। अगले दिन सब आए बोले प्रभु हाँ वो कृष्ण नहीं थे, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि आप भगवान हो, आप सन्यासी हो, सन्यासी का मतलब नारायण होता है, नमो नारायण नमो नारायण। ये मायावादी एक दूसरे को नारायण बोलते हैं, जैसे मेरे पास एक पैसा नहीं है आपके पास भी नहीं, मैं बोलता हूँ प्रभु ये लखपति प्रणाम और आप बोलते हो करोड़पति प्रणाम, लेकिन दोनों हैं जीरो पति है। तो ये एक मायावादी अपने आप को नारायण मानने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को बोला आप सन्यासी हो, सन्यासी जंगम नारायण होता है, आप नारायण के बराबर हो। महाप्रभु अपने कानों को बंद किया, बोले विष्णु विष्णु ऐसा कभी मत बोलिए, जीव कभी भगवान के बराबर नहीं हो सकता, जीव जो है भगवान का अंश है, पूर्ण नहीं हो सकता। फिर भक्तों ने बताया, लेकिन नहीं, आप जीव नहीं हो, आपके संग से स्त्री पुरुष बाल बूढ़े सब लोग प्रेम से हाथ ऊपर करके गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमें लगता है आप ही स्वयं कृष्ण हो। महाप्रभु ने कुछ बताया नहीं, वास्तव में वो सत्य था। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर रहे, नंदगांव में गए, वहाँ पर दर्शन किए पावन सरोवर का, नंद बाबा यशोदा माता का। एक्चुअली उस समय मूर्ति नहीं थे, मंदिर नहीं था। उन्होंने पूजा लोगों से पूछा, यहाँ कोई मूर्ति है क्या? बोले यहाँ यहाँ पर एक गुफा है, गुफा में दो व्यक्ति हैं बहुत मोटे और बीच में एक बालक है जो त्रिभंग सुंदर है। तो महाप्रभु गए अंदर, नंद बाबा यशोदा और कृष्ण के विग्रह को खोज के निकाला और फिर उनकी स्थापना बाद में की गई। फिर महाप्रभु खेलन तीर्थ गए, फिर खादीरवन गए, जो बरसाना के रास्ते पे खादीरवन है, जब भगवान कृष्ण को बकासुर ने खा लिया था बत्तख के रूप में, और सारे ब्रजवासी घबरा गए, अरे खायो रे नंद के लाला को खायो रे, तो गांव का नाम खियारा हो गया। और फिर भगवान कृष्ण अंदर जाके बहुत गर्म हो गए, नहीं कभी कभी जल्दी जल्दी प्रसाद में हम खाते हैं कोई गर्म गर्म पकौड़ा, तो वो पूरा मुंह से फिर भगवान को बाहर निकाल दिया, फिर से आक्रमण करने आया। भगवान ने उसके चोंच को पकड़ के दो भाग कर दिए। श्री कृष्ण भगवान की जय। आपकी आवाज से लगता है आपको दुख हो रहा है, बकासुर के साइड में है। जोर से बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। चलो अच्छा, पार्टी बदल ली आपने। बस 5-6 मिनट और बचे हैं, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। चैतन्य महाप्रभु वहां भी गए और उसके बाद फिर भंडीरव बन गए, जहाँ पर राधा और कृष्ण की पर विवाह लीला हुई थी। राधा रानी कृष्ण जा रहे थे नंद बाबा अपने हाथ में लेके, अचानक कृष्ण फिर 16 वर्ष के हो गए और राधा रानी भी 16 वर्ष की, और ब्रह्मा जी खुद आए, वो पुरोहित थे, उन्होंने विवाह करवाया। फिर भगवान छोटे बन गए, वापस घर चले गए। ये भंडीरवन में हुई थी, वहाँ पर भगवान बलराम जी ने प्रलम्बासुर का वध किया था। तो चैतन्य महाप्रभु सारे तीर्थों में भ्रमण किए, लेकिन फिर क्या हुआ कि सब बलभद्र भट्टाचार्य चिंतित हो रहे थे कि कभी महाप्रभु कभी यमुना नदी को देखते और गिर पड़ते, फिर बलभद्र छलांग लगा के भगवान को बाहर निकालते। तो बलभद्र भट्टाचार्य और जो 3-4 भक्त साथ में थे वो चिंता करने लगे कि आज तो हमने भगवान को यहाँ से बचा लिया, पता नहीं फिर गिर पड़े, और मेरा प्रॉब्लम क्या है? सब लोग बोल रहे हैं भगवान को मेरे घर ले आओ, मेरे घर ले आओ, और आई थिंक हमें भगवान को वृंदावन से बाहर ले जाना चाहिए, फिर कैसे ले जाए, उनको बुरा लगेगा। हम उनको एक बहाना करते हैं, हम बोलेंगे कि अभी मकर संक्रांति का समय आ रहा है, जनवरी का माघ महीने का स्नान होता है, तो उस समय प्रयाग जाना अच्छा है। हम ये नहीं बोलेंगे वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं, बस प्रयाग जा रहे हैं, भगवान को भी लोग ट्रिक कर रहे हैं ना प्रेम से। तो फिर भगवान के पास आए, बोले प्रभु अभी प्रयाग का महीना है, हम वहाँ जाएंगे, और प्रॉब्लम क्या है, सब लोग आयसी तुम्हारा बोले, सब आ रहे हैं आपको बुला रहे हैं, तुम्हारा ना खाए लोग मोर माथा खाए, आप नहीं मिल पाते लोग हमारा दिमाग खा रहे, हमको ले ले, इसलिए हम वृंदावन छोड़ के जाना चाहिए। महाप्रभु को तो बहुत दुख लगा, बोले आपने मुझे वृंदावन लेकर आए, मैं ये ऋण कभी नहीं चुका सकता। फिर भगवान और आगे गए और उन्होंने एक मोर को देखा, नीले रंग के गर्दन को देख के बेहोश हो गए, और अचानक वहां पे कुछ पठान सोल्जर आ गए घोड़े पे सवार होकर, और यहाँ पर 4 भक्त हैं, भगवान बेहोश हैं, बलभद्र भट्टाचार्य उनको पंखा कर रहे हैं, उठाने के प्रयास कर रहे हैं। वो मुसलमान चोरों, वो भी चोर थे खुद, उनको लगा कि ये लोग चोर हैं, क्योंकि यस आत्मवत मनने थे जगह, चोर को लगता है सब चोर हैं, भक्त लगता है सभी भक्त हैं। तो उन्होंने तुरंत ये चारों को बंदी बना लिया, बोले आप चोर हो, आपने इस ये जो व्यक्ति है इसको धतूरा खिलाया, बेहोश कर दिया, सारा पैसा चुरा लिया। तो बलभद्र भट्टाचार्य जो बंगाल से थे और दूसरे भक्त तो कांपने लगे, लेकिन 2 लोकल व्यक्ति थे, राजपूत कृष्णदास और सनोडी ब्राह्मण, वो बहुत बिंदास थे, बोले आप क्या बोल रहे हैं, चोर हैं, हम चोर नहीं हैं, ये हमारे गुरु हैं। इनको कभी कभी चक्कर आ जाता है, कैसे बोले कि एक्सटेसी में जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, और इस तरह से उनको समझाने का प्रयास, फिर भी वो नहीं मान रहे थे। तब वो राजपूत बोला, मैं यहाँ के राजा को जानता हूँ, अगर मैंने एक इशारा किया तो 100 सैनिक आके 200 तोप से बारूद फेंकने लगेंगे, आपका वध करेंगे और तुम्हारा घोड़ा पीड़ा लूटी जाए, तुम्हारा घोड़ा पीड़ा ले जाएंगे। तब इतने में भगवान को होश आया और वो मुसलमान सैनिक भी डर गए, उन्होंने भगवान सब चारों को मुक्त कर दिया। भगवान को होश आते ही वो बोले, देखो ये चार लोग हैं आपका पैसा चुरा रहे थे, हमने बचा दिया। तो भगवान हंस के बोले, ये चोर नहीं है, ये तो मेरे साथी हैं, और चुराएंगे क्या, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। फिर चारों में से एक था, वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसका वो भगवान के चरणों में गिर के बोला कि मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कुरान के आधार पर। भगवान ने कुरान के आधार पर सिद्ध किया कि भगवान एक व्यक्ति हैं, उनका श्याम सुंदर रूप है, श्याम कलेवर है। और सुनते सुनते वो मुसलमान बोला, यस आप जो बोल रहे करेक्ट है, लेकिन हम लोग कुरान ठीक से पढ़े भी नहीं है, और पढ़ते भी हैं समझते भी हैं तो भी स्वीकार नहीं करना चाहते, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। भगवान उनको दीक्षा दे दिया, कोई IDT कोर्स भी नहीं किया था उसने। क्या नाम दिया भगवान ने उनका? रामदास। और दूसरे थे, ये तो पहला था बिजुली खान, और दूसरे थे जो राजकुमार था, वो भी भगवान के संग से प्रभावित होकर भक्त बन गए। चारे सन्या जो पठान सोल्जर थे वो सारे वैष्णव बन गए और सारे गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये सब जगह जाकर भगवान गौरंग की लीला का गान करने लगे, एक प्रीचिंग पार्टी हो गई, TDSKP ट्रेवलिंग डेकोइट संकीर्तन पार्टी। और स्पेशली वो किसको प्रचार करते थे, वो किसको कर सकते ज्यादा अच्छा है, चोरों को, और चोरों को भक्त बना रहे थे। बस 2 मिनट बचे हैं, मैं एक श्लोक पे चर्चा करना चाहता था, समय नहीं मिला। एक भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, क्या वरदान मांगना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदाना, नाही मागी देह सुख विद्या धन जाना। बोल रहे हैं, प्रभु आपके चरणों में मेरा क्या निवेदन है, मैं धन नहीं चाहता, विद्या नहीं चाहता, नाही मागे स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी, ना करे प्रार्थना को न विभूति रलागी। बोले प्रभु मुझे कोई विभूति भी नहीं चाहिए, कोई योगिक शक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? निज कर्म गुना दोषे जे जे जन्म पाए, जनमे जनमे तव नाम गुण गाए। मुझे कोई भी शरीर मिले, पशु का मिले पक्षी का मिले, बस आपका नाम लेता रहूं, गौरांगा, यही मेरी एकमात्र आशा मम तुमार चरणे, अहै तू की भक्ति हृदय जागी अनुच्छाने। यही मेरी प्रार्थना है कि आपके प्रति अहेतु की भक्ति जागृत होती रहे। जो विषय जे प्रीति एबे आचाए अमार, से प्रीति हौ का चरणे तुमार। जो मेरी प्रीति संसार के विषयों में है, मेटीरियल चीज के लिए है, वह आपके चरण में हो जाए। विपदे संपदे ताहू ठाके के समभाव, दिने दिने वृद्धि हो ना मेरा प्रभाव। विषय सुख हो या दुख हो, मेरा आपके प्रति प्रेम बढ़ता रहे नाम के प्रभाव से। पशु पक्षी हो ए ठाकी स्वर्गवानी रहे, तव भक्ति रहे भगति विनोद हृदय। मैं अगर पशु भी बनू पक्षी भी बनू, आपके प्रति प्रेम बना रहे। प्रहलाद महाराज से भगवान ने पूछा, प्रहलाद क्या वरदान चाहिए? प्रहलाद ने क्या मांगा? यदि दास्यसी, भगवान आपको देना ही चाहते हो तो क्या करो कि मेरे हृदय में जो भौतिक इच्छाएं हैं वो नष्ट हो जाएं। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये, मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवता भक्ति रहित की। मुझे धन जन कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए। और लास्ट में कुंती महारानी की प्रार्थना है। कुंती महारानी इतने विपत्ति सहन करती है, उनके घर के परिवार में झगड़ा हो रहा है, बहू की बेइज्जती हो रही है, घर में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, 12 साल वनवास में गए हैं, नहीं, कुंती महारानी क्या बोलती है, विपद संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान बार बार विपत्ति आते रहे, क्योंकि विपत्ति आएगी तो आपका स्मरण होगा। तो आज हमें भी भगवान से ही वरदान मांग लें कि हे राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताय, बस मुझे आपके स्मरण रहे, मैं आपके भक्तों की सेवा करता रहूं और मेरी जीभ पर हमेशा आपका नाम रहे। मैं ऐसा जप करूं कि मैं भी शुद्ध हो जाऊं और पूरे ब्रह्मांड में सब जीव आपके चरणों में आ सके। सर्वे सुखिनो भवन्तु सर्वे सुख निरामय। सब लोग दो मिनट आंख बंद करके प्रार्थना करें भगवान कृष्ण बलराम से कि हम सब शुद्ध हरि नाम लें और सारे जीव भगवान राधा श्याम सुंदर के चरणों में आ सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रहलाद महाराज कलयुग में फिर से आते हैं। प्रहलाद महाराज उनका क्या नाम होता है कलयुग में, वासुदेव दत्त। चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, वासुदेव वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? और वासुदेव दत्त क्या वरदान मांगते हैं? हे प्रभु, मेरा हृदय बहुत दुखी है यह देखकर कि संसार में जीव दुखी हैं। मेरी यह प्रार्थना है कि सब जीवों का उद्धार कर दो, सबको भगवत धाम ले जाओ, चाहे पापी हो, पुण्यात्मा हो, भक्त हो, अभक्त हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सांप हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको आपके चरणों की प्राप्ति हो। और अगर वो बहुत पापी हैं, उनके पाप मुझे दे दो, मैं हमेशा के नरक में रहने को तैयार हूं, और इन सब जीवों का उद्धार हो जाए, ये सब आपके चरणों में चले जाए, मैं इनके दुख को सहन नहीं कर सकता। महाप्रभु के आंखों से आंसू आ गए, बोले वासुदेव आप चिंता मत करो, भगवान आपकी इच्छा को पूरी करेंगे, लेकिन आपको नरक नहीं जाना पड़े। महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, मुरारी क्या वरदान चाहिए? मुरारी बोलते हैं, बस मुझे भक्तों का संग चाहिए। वो पूछते हैं श्रीवास को और हरिदास ठाकुर को, सब यही वरदान मांगते हैं कि भक्तों का संग मिले और जीवा पर आपका नाम रहे। तो आज हमें भी यही मांगने भगवान से हर क्षण कि मुझे आपके भक्तों का संग मिले, हरि कथा में रुचि मिले और हमेशा हम गाते रहें हरे कृष्णम कृष्णा कृष्णम हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे प्रार्थना करते हैं, कबे हबे बोलो से दिन अमार, वो दिन कब आएगा अपराध गुची शुद्ध नामे रुचि। नाम तो मैं ले रहा हूं लेकिन बिना अपराध के शुद्ध नाम लो, ये प्रार्थना मैं कर ली। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण बलराम गौर निताई राधा श्याम सुंदर की जय।